मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनका जो है वो रूट उनके मादा। या कुमानी हकम, हा काफ मीम हकम, और इसके मानी क्या होते हैं हकम के? फैसला करना, फैसला करने की कुव्वत। हर्ष के मानी क्या होते हैं? खेती के लिए लफ्ज इस्तेमाल आता है। और हारिस किसान को भी कहते हैं जो काश्तकारी करता है ना। चौकीदार को भी कहते हैं क्योंकि किसान जो है वो निगेबानी करता है, निगेदाश्त करता है, तो उसके मानी में भी आता है। नफाशत, नफाशत जो है इसके मानी है नून फा शीन, नून फा शीन, और इसके मानी है रात के वक्त बकरियों का बगैर चरवाहे के चरने के लिए मुंतशिर हो जाना। यानी अन्नफ्श उन बकरियों को कहते हैं जो रात को बगैर अपने गडड़िए के, बगैर अपने चरवाहे के चरने के लिए वो मुंतशिर हो जाएं, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। गनम, गनमुल कौम, गनम जो है यही इसका रूट है। और किसको कहते हैं? बकरी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और जानवरों की जमात को भी कहते हैं। इसी तरह मगानिम, मगानिम मालो दौलत को भी कहते हैं, माल गनीमत। क्यों माल गनीमत को कहते हैं? कि जब जंगें होती थी तो अक्सर जो जंग करने के लिए लोग आते थे वो अपना मालो दौलत भी साथ लेकर आते थे, जिसमें बकरियां रेवड़ जानवर भी होते थे। तो माल गनीमत मिला गोया के वो मुफ्त ही हाथ आ गया ना, और जिसमें बकरियां वगैरह भी शामिल थी, उस मानी में भी आने लगा। फफहम नाहा, इसका मादा क्या है? फाहामीम, फहम से है, और फहम क्या होता है? सूझबूझ। फिर है आयत नंबर 80 में सन आता, स्वाद नून आयन, और इसका मतलब क्या होता है? कारीगरी, कारीगरी किसी चीज को बनाना, महारत से बनाना, खूबसूरत बनाना। फिर लबूसिन, लबासा से है, लिबास से, और लेतोसिना कौन? हा स्वाद नी नून, मानी क्या है इसके? असल में किले को कहते हैं, हिफाजत को, हिफाजत के लिए चूंकि किला बनाया जाता है, तो इसी से मोहसनात ऐसी औरतों को भी कहते हैं जो अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। जैसे किला हिफाजत करता है ना, तो औरतें अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। निकाह के लिए भी आता है कि निकाह में, निकाह हो जाता है तो औरत की इज्जत की हिफाजत होती है। खानदान के लिए भी आता है कि खानदानी लोग जो होते हैं, खानदान एक किला है, निकाह एक किला है, खानदान एक किला है, तो उससे इंसान की हिफाजत होती है। बा से कुम, बा हमजा सीन, जरा ऊंचा बोलें, क्या रूट है इसका? मानी क्या है? लड़ाई, झगड़ा, भूख, तंगी, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है रीहा, रा या हा, और मैंने आपको बताया था एक होती है री और एक होती है रिया, दोनों में क्या फर्क है? री की जमा रिया है, और जब जो है जैसे आम जब कोई भी हवा होती है तो क्या है कि री है ना। इन्नी लाजेदू रीहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू जो है वो पाता हूँ। आम हवा को भी कहते हैं और खुशबू को भी कहते हैं। इसी तरह रोब और दबदबे के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। पतज़हबा रीहुकुम, तो हवा जो है, री लफ्ज तीन माने में मिला हमें, एक हवा, दूसरा खुशबू, और तीसरा रोब और दबदबा। इसके अलावा जो एक और बारीक नुकता है कि रीह की जमा रिया है, जब इरसाल रिया है तो वहां रहमत की हवाएं मुराद होती हैं, और अगर इरसाल री हो तो वाहिद का सीगा इस्तेमाल हो तो इससे मुराद अजाब देने वाली हवा होती है। लेकिन जैसे कभी कभी इससे जो है वो हटकर भी इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे बोले सुलेमान रीहा, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख़र कर दिया था, तो री है, लेकिन कौन सी हवा है ये? रहमत की, कि हवाएं ही उनके लिए जो थी वो मुसख़र थी। दूसरा है आसिफतन, तो ऐन स्वाद फा, और ऐन स्वाद फा जो है इसका मतलब असल में होता है भूसा। अस, हाँ, कूल जो है ना, अस किसे कहते हैं? भूसी, भूसा, खुश्क नबातात जो टूटकर चूरा चूरा हो जाए। तो आसिफा उस तेज हवा या आंधी को कहते हैं या जो भूसा या इसके बराबर की चीजों को उड़ाती फिरे। समझ आई? वैसे तो भूसे को कहते हैं, लेकिन अगर हवा के लिए आसिफा लफ्ज आ रहा है तो ऐसी तेज हवा जो भूसे को उड़ा दे, तो मुराद फिर क्या हुआ? आंधी, तेज हवा या आंधी जो है इसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, भूसे तिनके उड़ाने वाली आंधी। फिर इसके बाद है आयत नंबर 82 में, यगूसूना गैन व स्वाद, और इसके मानी है गोता लगाना। तो गैन व स्वाद के मानी क्या है? गोता लगाना। फिर इसके बाद है ये लफ्ज है दुर, तो अन्नी मसनी दुरु रा, इसके मानी क्या है? तकलीफ। और अगर इसके ऊपर जबर हो, यानी यहाँ पे तो बीमारी है ना, कि मुझे बीमारी लग गई है, तकलीफ लग गई है, और खास बीमारी की तरफ उनका इशारा है अय्यूब अलैहिस्सलाम का, लेकिन अगर इस पर जबर हो तो जरर, हर तरह के नुकसान के लिए फिर ये इस्तेमाल किया जाता है। और फकशफना क्या मादा है? कैफीन फा, मानी क्या है? दूर करना, हटाना। और वजल किफल क्या रूट है इसका? काफालाम किफल, हिस्सा और नसीब को कहते हैं, है ना? और जो हिस्सा है, जैसे अगर किसी किसी के बारे में आ जाए कि वो जल किफल है, तो हिस्से वाला, नसीब वाला, तो यहां पर फिर नसीब जो है इससे मुराद हिस्सा तो है, लेकिन कौन सा हिस्सा? ये मैंने आपको बताया था कि किफल जो है इसका मतलब है कि ऐसा हिस्सा जो किसी काम का लाजमी नतीजा हो। अगर अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा नतीजा, अगर बुरा काम किया तो उसका बुरा नतीजा। तो गोया के फिर इससे मुराद है किसी अच्छे या बुरे काम के बदले में हिस्सा जो मिले इंसान को, है ना? तो हिस्से के लिए वैसे तो आपने 7 लफ्ज पढ़े थे ना, अब खलाक भी हिस्सा है, तो खलाक क्या था? जो किसी को इखलाक के नतीजे में जो हिस्सा मिले, अच्छा इखलाक है तो उसके नतीजे में हिस्सा मिलेगा, बुरा इखलाक है तो उसके नतीजे में हिस्सा मिलेगा। हाँ, शाबाश हिज्जुन, खैर व फजल का हिस्सा, हज जो है, जुल्फ जो है रात का इब्तदाई हिस्सा, जुल्फत मिनल लैल, रात का इब्तदाई हिस्सा। इसी तरह जुज किसी चीज का हिस्सा या टुकड़ा, ये आम है ना? आपने पढ़ा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सूरत अल बकरा में, मजल अला कुल्ले जबल मिनहुन्ना जुज़आ, है ना? फिर इसके बाद क्या है? बाज, ये भी किसी कुल के, हाँ, किसी कुल के जुज के लिए इस्तेमाल होता है। फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा, कहाँ पढ़ा था आपने? गाय का वाक्या, शाबाश। और इसी तरह फिर नसीब भी है, नसब से है नसीब, वो हिस्सा जो मुकद्दर हो थोड़ा या ज्यादा, नसीब में ही ये लिखा था। तो जुल्किफल फिर क्या है? नसीब तो है, किफल तो है, हिस्सा तो है, लेकिन किसी काम के नतीजे में वो काम अच्छा या बुरा है उसके बदले में जो हिस्सा मिले। मुगादेबन गैन द्वाद बा, गजब से है कि उनकी हालत गुस्से की हालत थी। और आयत 88 में है नून जी, क्या रूट है? नून जी वो। और आखिरी आयत है कुल्लुन एलेना राजिउन, आयत नंबर 93। तो राजिउन का रूट क्या है? राजिम आयन। हदबिन, हा दाल बा हदब, और हदब जो है ये ऊंचान बुलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उभार को कहते हैं टीला, ऐसा टीला जो फैलाव में ज्यादा और बुलंदी में कम हो। और इसके अलावा अगर आप गौर करें तो ये जो लेंस होते हैं, उनको भी कहते हैं लेंस जो है, क्या कहते हैं उनको, हाँ वो हद्दिक। तो लेंस क्या होते हैं कि वो भी देखिए उभार सा होता है उनमें भी, है ना, बिल्कुल सीधे नहीं होते, उभार सा होता है। इसी तरह जो कुबड़ा है ना, कुब होता है उसकी कमर में, सीधा नहीं होती ना, उसके उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हदब का ना। तो ये है हदब यानी, और यहाँ पे हदब लफ्ज़ जो है वो मस्दर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यन सेलून नून सीन लाम, दौड़ना, और इसके साथ ही इसके मानी है कि जैसे दौड़ना, या फिर आप कह सकती हैं कि निकलना, फिसलना। तो ये लफ्ज जो है नस्ल औलाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नस्ल क्या होती है, औलाद क्या होती है, कि वो जैसे फैलती चली जाती है, जैसे स्लिप होकर नहीं, और दादा से नाना से आगे नस्ल चलती है। तो इसी तरह ये लफ्ज जो है ये फैलने के लिए, दौड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। शाखिसातुन आयत 97 में है, शीन खासवाद, शख्स, शख्स भी इसी से है। शख्स आप उर्दू में बोलती है ना, आदमी भी कहती है, शख्स भी कहती है। असल में इसके मानी होता है कि खुली का खुली रह जाना, फटी की फटी रह जाना। जैसे किसी की आंखें हैं और आंखें जो हैं वो खुली की खुली रह जाए, फटी की फटी रह जाए, तो इससे जो है वो क्या मुराद है कि जैसे कोई चीज जो है वो बड़ी खुली हो, वाजे हो, या जैसे तशखीस, डॉक्टर ने तशखीस की, खूब आंखें फाड़ कर देखा, है ना, शाखिसातुन खुली की खुली रह जाएंगी। असल में ये देखना कैफियत के लिए है ना, तो फाड़ फाड़ कर आंखें देखना। शख्स भी ये है कि खुली आंखें खोल कर कोई खड़ा हुआ है तो शख्स। फिर है आयत नंबर 98 में हसाबू, ये ईंधन को कहते हैं, और आप पीछे हासिब आंधी अजाब के मानी में पढ़ चुकी, और किस मानी में आपने पढ़ा था कि ऐसी आंधी, ऐसा अजाब जिसमें पत्थर भी हो ना, पढ़ा था ना आपने। तो असल में ये ईंधन और पत्थर को कहते हैं। यहाँ पे हसाबू जो है ये ईंधन जहन्नुम का, गोया कि जहन्नुम में जिस मटेरियल से, जिस मवाद से आग लगेगी उसमें ऐसे पत्थर भी शामिल होंगे जिसे आग बढ़ती चली जाएगी। फिर है आयत 100 में जफीर लफ्ज है, जाफारा, ये सख्त गर्मी, मेहनत और थकान की हालत में जब आदमी लंबी सांस लेता है, एक फुंकार किसी शक्ल में लंबी सांस जो है वो लेता है, और इसे अरबी में जफीर भी कहते हैं ना, जाफा और रा। और यहां पे भी जफीर है। अच्छा आप देखेंगे ये जो जफीर है ये कब कब ली जाती है, जब इंसान बहुत दुख की कैफियत में हो, बहुत गहरी, हाँ गहरी गम की कैफियत में है, तब भी वो खींच खींच कर सांसें लेता है लंबी डीप। तो हिचकियां, आहें, सिसकियां, जफीर। तो ये हिचकियां, ये आहें, ये जो सांसें हैं ये चाहे अजाब की वजह से हैं, चाहे शदीद गर्मी की वजह से हैं, चाहे ये थकन की वजह से हैं। तो चाहे इंसान बड़ी ही मेहनत की कैफियत में है तो उस वजह से वो ऐसी सांस जो है वो लेता है। तो बहरहाल ये लफ्ज जो है इन तमाम मानी में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पीछे पढ़ चुकी थी, इसे मिलता जुलता क्या था, शहीका हुआ जफीर, है ना, हाँ। तो हल्की आवाज भी, ऊंची आवाज भी, तो गधे की चिंगाड़ वगैरह के लिए भी। फिर है हसी साहा, हा सीन सीन, और इसके मानी होते हैं खटका, हरकत को असल में कहते हैं हिस, हरकत आहट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी से महसूस है, इसी से उसमें हिस नहीं है, उसने महसूस नहीं किया, इसको आहट का एहसास ही नहीं हुआ, हूं सारी बातें एहसास भी इसी से है। फिर है आयत 103 में फजाऊ, फाजाइन ये बेकरारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जजा फजा आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। आयत नंबर है 104 नतवी, तोए वो या, और इसके मानी होते हैं लपेटना, जैसे रोल करना किसी चीज को। पीछे आपने ये भी पढ़ा था कि तुआ वादिये तुआ में ना, तो मैदान, वहां पे मैदान के मानी में जो है वो इस्तेमाल हुआ, और इसके वैसे मानी क्या है, किसी चीज को रोल करना। यहाँ पे नतुई है और यहाँ पे कतई सिजिल, तो तई जो है ये भी वही है, नतवी ही वाला है, इसका रूट भी क्या है, तोए वो या। फिर इसके बाद अहम लफ्ज है सिजिल का, सिजिल जो है ये कागज का तुमार, सहीफे के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है सिजिल। असल में कहते हैं ये पत्थर को कहते हैं जिस पर कुछ लिखा जाए, और इससे मुराद किताब भी है, पत्थर भी है, और मायदात का रजिस्टर भी है ना, रिकॉर्ड रखने के काबिल जो भी चीज है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है कि जैसे वो एक पूरा वो खत है तो उसको लपेट लिया जाए, खत का तुमार। फिर है इसके बाद है आयत नंबर 112 आखिरी आयत है, और इसमें है अलमुस्तान, क्या रूपट है इसका, आयन वनून आन से है। सूरत फातिहा में इसे इसकी फैमिली का लफ्ज क्या था, नस्ताइन, शाबाश, तो यहाँ पे आन ये मदद के लिए, अलमुस्तान जिसे मदद मांगी जाए, जिसे मदद मांगी जाए तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है।